ایک قطرہ شیطانی ہوتا جیسے ہر منشیہ سے ایشور نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کو اپنے نج دھام میں بلائیں گے, ویسے ہی شیطان نے بھی یہ وعدہ کیا ایشور سے کہ آپ نے ہماری پوجا نہیں ہونے دی, لہذا ہم منش یونی میں منش کو آپ کے پاس نہیں پہنچنے دیں. لہذا ایشور اور شیطان میں ٹسل ہوتی ہے. شیطان کا کام ہی مس گائڈ کرنا ہے. تو جو خطرات شیطانی ہوتے ہیں وہ آدمی کو گرو کے بندھن سے ڈھیلے کرتے چلے جاتے ہیں. اسی کے لیے پرارتھنا ہوتی ہے, مجھ کو خطرات شیطانی, نفسان شیطانی, بحرکات شیطانی سے بچائیے. خطرات شیطانی کا مطلب یہ ہے کہ جو خطرہ شیطان کی طرف آیا. نفسان شیطانی کا مطلب ہے اس پہ ہمارے من پسند نہ ہو اور پھر اس کے ابھاؤ میں ہم کچھ نہ کریں. یہ حرکات شیطانی, تیری رضا میری رضا. تو کیا کرتے ہیں کہ جیسے پرم پوج باؤ جی مہاراج پہ جب یہ حالت گزری, جب ان کے شالی کی شادی تھی تو چوری ہو گئی, لہذا یہ ہوا کہ سب جتنے لوگ پوجا پاٹ کرتے ان کی زندگی بیکار ہے, انہیں کو مصیبت آتی ہے. یہ خطرہ شیطانی تھا. پکڑے کون رہا؟ لالا جی مہاراج جو بحثیت جیلر کے ان کو ایک قیدی بنا رکھا تھا, اس کے پکڑے, اسی کی کوشش کرتے. تو حدیث پہ خطرات شیطانی کی حالت گزرتی, گرو کا ہی سہارا نکالا. آخر میں پربھو چاچا جی مہاراج کو بھیجا, ان کا یہ چھٹی جگہ ہے جہاں ہم کو اسی کام کے لیے بھیجا. اس سے مطلب یہ ہے کہ چھ لوگ اور بھی تھے جو اسی خطرہ شیطانی میں پھنسے ہوئے تھے. اگر اس سے ہم نہیں نکلتے اور گرو کا ہاتھ ڈھیلا ہوتا تو اسی میں آدمی پھنس کے رہ جاتا. سیکنڈلی خطرات رحمانی ہوتا ہے, کہ گرو کی طرف سے کوئی اشارہ ہو گیا کہ ایسا کر دیجئے. یہ لائف ہسٹری پڑھیے, اس کے ارتھ کو خوب سمجھے. باؤ جی مہاراج کو چٹھی لکھی لالا جی مہاراج, کہیں نہیں لکھا تھا کہ ہمیں پیسہ بھی, بس ایک چٹھی لکھی گئی لڑکی کی شادی اس طرح سے, میری لاج ایشور کے ہاتھ میں ہے. اسی وقت شاید بہت بڑی بھول لا لیا, کسی گونا بھی تھا, یہ خیال تھا ان کا. جس کا سر یہ ہوا کہ بھائی جی اسٹیشن سے گئے واپس اور سب پیسہ جتنا پاس بک میں تھا منی آڈر کر. یہ بھی کر سکتے تھے کہ لاؤ پچاس روپے بھی بھیج دیں پچاس. یہ خطرہ شیطانی ہوتا, سب چیزیں نکالی, خالی اکاؤنٹ مینٹین رہنے کو چھوڑ کے سب پیسے بھیج دیا. نتیجہ کیا, کون نے آشیرواد دیا. آشیرواد سے ہمیشہ راستہ سہل ہو جاتا ہے. تو خطرہ رحمانی جو ہے وہ بھی ایک طرح کا خطرہ ہوتا ہے, جس پر آدمی کو یہ گرو ہو جاتا ہے کہ سب میں نے یہ کیا, میں نے نہیں گرو نے آپ سے کروایا. بس آپ اتنے ہی پاتر ہیں کہ گرو نے آپ کو اس یوگ سمجھا کہ آپ سے کروا لیا. پوجی لالا جی مہاراج صاحب کے اور بھی ششیہ تھے, उनसे उन्हें नहीं कर पाया। देखिए यही चीज है जिसकी वजह से आशीर्वाद दिया और हमेशा मिलता रहा। तो खतराते जो रहमानी होता है उसमें भी दूसरी स्टेज में आदमी को डर रहता है, उसको अपना मन अहम आ जाता है कि मैंने ऐसे कर दिया। अक्सर आपने देखा हुआ ऑफिसरों ने कहा हमने उसका भला कर दिया, हमने उसका अपॉइंटमेंट कर दिया। तुमने ईश्वर ने आपसे करवाया, अगर ईश्वर न चाहता तो नहीं होता उसके अपॉइंटमेंट। तो इस तरह से ये दोनों खतरे से आदमी को बड़ा अलर्ट रहना चाहिए। मुसीबत सब पे आती है, परेशानी सब पे आती है, लेकिन गुरु के अगर बंधन आपने ढीले नहीं किए हैं और गुरु की पकड़ है तो ये सही सलामती से बीत जाता है। अगर नहीं है तो डेफिनेटली ये है कि आदमी कतरे शैतानी में फंस जाता है। कतरे रहमानी भी ये है कि हमेशा अपने को दीन समझता रहे कि हम नहीं, हमारे गुरु ने ऐसा कर दिया। परम पूज्य बाबा जी महाराज लिविंग एग्जाम्पल थे, हमेशा कहते थे पता नहीं लाला जी महाराज साहब ने हमने क्या किया। देखा उन्हीं की दया सब कुछ है, कभी ये नहीं कहा था मैं परम संत हूं फलाना हूं, ये सब उन्हीं की वो है। जो पुराने लोग हैं उन्हें देखते होंगे आप लोग तो पीछे एक तरफ बैठे रहते थे, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि साहब आप सबसे पुराने आदमी इधर आ जाइए, लेकिन कभी कुछ। एक साहब ने कहा साहब ये बड़ी जाति इनकी है, तो ये तो पहले भी हमारे लिए मदरसा था, स्कूल था, उर्दू में उर्दू स्कूल को मतलब पहले भी मदरसा था, यहीं से हमने तालीम पास की थी, पहले भी नीचे बैठे तो आज भी बैठे। और ये उन्हीं की वो है जिसकी वजह से आज स्थिति और है, क्योंकि हमेशा जो खतरा रहमानी होता है तो जो शख्स गुरु की तरफ से समझता है वो निकाल ले जाता है, जो अपने पर रहता है उसको भी एक धोखा हो जाता है। और इसीलिए इसको बड़ा बैलेंस करके रखते हैं। कौन बैलेंसिंग पावर होता है? गुरु ही बैलेंसिंग पावर होता है। कि उसके बाद भी यानी सब चीजें बाबू जी को भी ये लगता था कि हम इनके जाकर जाते हैं तो चाचा जी महाराज लाला जी महाराज बड़ी खातिर करते हैं और ये आ रहे हैं, यानी बाबूजी खुद लिखा और यही एब्सोल्यूट ट्रुथ होती। हो सकता था इसे छिपाए जाते अपनी डायरी में तो बाबू बड़ी मोहनलाल जी आ रहे हैं, बाबूजी लेने नहीं जा रहे हैं। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या होती है कि जो मन में आया वही लिख दिया, ये नहीं सोचा कि इनके लड़के या कोई पढ़े तो उन्हें बुरा लगे, लेकिन यही सच्चा। और जब तक हृदय पवित्र नहीं होता तब तक प्रभु का वास नहीं होता। देखिए ठाकुर जो गुजर गए हैं उनसे सीखना चाहिए। ठाकुर रघुराज सिंह ये श्री नरेश सिंह थे, सब तैयारी हो गई कि बनारस वाले लोगों को दीक्षा दी जाएगी, क्योंकि उसमें सबसे अगुआ नहीं थे। जब तैयारी हुई तो ताऊ जी ने बुलाया, बाबूजी बैठे हुए थे तो उन्होंने यही कहा कि साहब देखिए हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन जहां तक प्रेम का सवाल है जो आपने सिखाया वो हमको डॉक्टर साहब से, तो अगर ये दीक्षा दे तब तो ठीक है, नहीं तो हम दीक्षा नहीं लेंगे। बस ताऊ जी ने वहीं से कहा भाई श्यामलाल अब वक्त आ गया इन लोग को तुम्हें दीक्षा दो। बाबूजी बाद में उन्हें कहते थे बड़े मर्द आदमी थे, ताऊ जी पहले ही उनसे कहते थे पूरब के शेर है, यानी हमेशा ताऊ जी ने यह संबोध किया कि ठाकुर शिवनेश सिंह जो है वो पूरब के शेर है। क्या था? जो मन में था जो दिल में था वो साफ कर दिया। ये नहीं सोचा कि बाबूजी को बुरा लगेगा कि इनको बुरा लगेगा। तो जो एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है वहीं पर पड़ता पड़ा। तो चाहे कोई भी खतरा हो मैं कि टूटिया गए गुरु के पास, उनमें सब ऐसी ऐसी बात है, अब तो उससे आपका बुनियाद भी हल्का हो जाता है कहने से, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर प्रार्थना करता है और धीरे धीरे ये निबट जाती है। और जी की भी हालत गुजरी, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो सेरा में जिस पे ये हालत नहीं है, और धीरे धीरे जिनका हाथ उनने मजबूती से पकड़ा था सब पर निकल गए। तो खतरा शैतानी, खतरा रहमानी, दोनों ही खतरे जो हैं डिफिकल्ट होते हैं, और सबसे जरूरी है गुरु की पकड़ मजबूत हो। दूसरे सत्संग, बगैर सत्संग के विवेक नहीं होता, बगैर विवेक के आप करेक्ट थिंग नहीं कर सकते। इसीलिए किसी ग्रंथ में हो हर शख्स ने सत्संग की होती। आप लोक में पहुंच गए, आगे के लिए कोशिश करें। शुद्ध रखने के लिए हम लोग के यहाँ सबसे हमेशा कोई दोष में देख लीजिए कि बड़ी हक हलाल की कमाई करो, यानी मेहनत की कमाई, ईमानदारी की कमाई की बड़ी बरकत है। और इसीलिए उन लोगों ने इस पर जोर दिया, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग चीज जो है वो अन्नमय कोशी है। जैसा आप खाएंगे वैसे ब्लड बनेगा, और वही ब्लड सर्कुलेट होके वैसे विचार बनाएगा, और जैसे विचार होंगे वैसे ही आपका एक्शन होता चलेगा। इसलिए हर धर्म में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, डाइट पर बड़े जोर दिया कि भाई तुम्हारी डाइट बड़ी सादा हो, सिंपल हो और ज्यादा ना हो। हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने जो चीज अच्छी लगती थी उसको बड़ा रिस्ट्रिक्टेड खाते थे, खाने में अच्छी लगती थी, लेकिन जब भी पेट ज्यादा भर जाएगा तभी मन हमेशा मोटा होता। इसलिए उन लोगों ने, इसी तरह आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, मुसलमान लोग जनरली बड़े खूंखार होते हैं। रीजन ये है कि जानवर खाते हैं, जानवर की प्रकृति डेवलप होती है। कभी देख लीजिए कहीं भी लड़ाई हो, ईरान तेहरान, हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिए, हमेशा मुसलमान लोग से शुरू हुई है। उसकी वजह यही थी कि ये लोग मीट और मछली खाते थे, लिहाजा इनके विचार भी वैसे ही। हम लोग के यहाँ डाइट में सबसे उन्होंने भाई फल और दूध, जितने ऋषि मुनि थे इनके यही कि कई ने यही पर माना था, कंदमूल भाग जब तुम जंगल में भेज रही तो हम कुछ भी खाएं, लेकिन उसका रीजन यही था कि इनका मनोमय कोशी चेंज हो जाएगा, प्राणमय कोश अपने आप होगा, लिहाजा लौट के ये राजा की बनने की पूर्ति करेंगे। तो सबसे यानी परमार्थी जो है और कुछ नहीं है, रेगुलेशन ऑफ योर डेली लाइफ है कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को रेगुलेट करते हुए जो असल है जिसने पैदा किया है वहां तक पहुंच सकते। उस रेगुलेशन में जहां कमी है वहीं पर रुक जाता है। तो खाली अपने ही जीवन का आदमी रेगुलेट करता है कि जिस मालिक ने हमें पैदा किया है, सहारा जैसे बाप बच्चे का लेता है, बच्चा जो है शुरू से पढ़ाने में नहीं होता, बाप धीरे धीरे उसे माँ बता के ज्ञान देते हुए टीचर रखते हुए वो एक दिन ज्ञानी बन जाता है। कभी कभी ये होता है बाप से भी अच्छा हो जाता है। तो इसी तरह बाप को क्या सहारा रहता है कि ये जिस तरह से मैंने अपने जीवन को सफल किया, ये अपना जीवन सफल करके औरों के भी लिए बोलो। तो इस तरह ये चेन चलती रहती है। संत हमेशा दुनिया में थे, आए और आते रहे, ये अनएंडिंग प्रोसेस है। तो कोशिश यही करिए कि इस जन्म को आखिरी वो समझे कि साहब ये हमारा निर्धाम पहुंचने का लास्ट वो है, उतने प्रश्न। इसीलिए चाचा जी महाराज ने लिखा है कि अन्नमय कोष मनोमय कोष दो आदमी को तय करनी है। बच्चा क्या करता है एजुकेशन में, खुद पढ़ता है, मेहनत करता है, ये दो बच्चे हो गए। टीचर क्या करता है, उसे गाइड करके जो इधर उधर की चीजें उनसे बचाता हुआ उसे एक दिन उस पोजीशन पर ला देता है जिस पर वो ज्ञानी कहलाता है। तो दो हिस्से अभ्यासी को तय करने हैं, तीन हिस्से गुरु को तय कराने हैं, और यही बंटवारा है। तो चाचा जी महाराज हंसते रहते थे, लेकिन सब चीजों की उनकी बड़ी होती और सब चीजें हंसी हंसी में कह दिया करते थे। तो लेकिन हर स्टेप की उनको टोटल नॉलेज थी कि प्रॉपर क्या है। इन्हीं सब चीजों को लेके हमको चलना है कि पहले हम अपने अन्नमय कोष प्राणमय कोष को शुद्ध कर लें। एक साहब यहाँ हमारे पास आए, तुम साहब हम 10 साल हो गए अपने गुरु के पास जाते हुए, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमने कहा उनने आपको क्या बताया, उन्होंने बताया कि हर सांस में मेरा ख्याल रहे, तो उनके इससे बड़ी पूजा ही नहीं हो सकती कोई। देखिए हर सांस का मतलब ये है कि नॉर्मल आदमी 18 से 24 मरतब सांस लेता है, तो जब तक आप सांस ले रहे हैं तब तक अपने गुरु का ख्याल, इससे बड़ी पूजा क्या हो सकती है। तो एक्चुअली ये है कि लोग उसको क्योंकि दुनिया में फंसे रहते हैं, ये भी काम करते रहते हैं, हाफ हार्टेडली करते हैं, इसलिए उनको उस फायदे का अनुभव नहीं होता जितना होना चाहिए। धीरे धीरे इसको माइनस करते चले जाइए तो हर चीज खुलती है। सब ज्ञान आपके अंदर है, किसी के अंदर नहीं है, लेकिन वही ज्ञानी जो जब तक मेहनत करके नहीं खुलेगा तब तक ये ज्ञानी बना रहे।
परम पूज्य लाला जी महाराज साहब के शिष्य हरनारायण चाचा जी नहीं रहे, और पिछले हफ्ते रायपुर साहब निवासी मंजूर हसन साहब नहीं रहे। मंजूर हसन साहब मौलवी फजल अहमद साहब के नवासे थे, और शुरू से ही आप भोपाल चले गए थे और वहीं निवास करके और बुजुर्गों का काम करते रहे। आप मौलवी अब्दुल गनी साहब के शिष्यों में से थे, और परम पूज्य चाचा जी महाराज साहब का न्याज हासिल था। पहले जब हम लोग परम पूज्य बाऊजी महाराज साहब के साथ जाते थे, उस वक्त तक आप भोपाल से फतेहगढ़ के भंडारे में नहीं आते, लेकिन शताब्दी के बाद से बराबर आने लगे, और खासकर जब बाऊजी के साथ हम लोग रायपुर जाते थे तो आप बड़ी बेकरारी से इंतजार करते हैं और उस परंपरा को उनने बराबर कायम रखा। सभी भाइयों से अनुरोध है कि आज बड़ी श्रद्धा से उनके लिए ओम शांति का जाप करें और प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद हमें मिले और वो जहाँ हो उन्हें बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले।